रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।
आज है 13 मार्च, दिन शनिवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें रोहित जोशी का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार को मिनियापोलिस सिटी काउंसिल देगी $2.7 करोड़ का मुआवजा। क्वाड देशों ने वर्चुअल समिट में जताया चीन क्लाइमेट चेंज और COVID-19 से निपटने के लिए आपसी सहयोग का भरोसा। भारत की महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में रोहित जोशी के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
पिछले साल अमेरिका और दुनिया भर में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का स्रोत बनी मिनियापोलिस शहर में जॉर्ज फ्लॉयड की एक गोरे पुलिस अधिकारी के हाथों हुई हत्या के मामले में अब शहर की सिटी काउंसिल ने फ्लॉयड के परिवार को हर्जाने के तौर पर $2.7 करोड़ देने का समझौता किया है। एक गोरे पुलिसकर्मी ने निहत्ते काले नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को तब तक अपने घुटनों से दबा कर रखा जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई। एक रिपोर्ट के साथ हैं हमारे सहयोगी शादाब हसन खान।
अमेरिका के मिनियापोलिस शहर की सिटी काउंसिल ने पुलिस हिरासत में काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मुकदमे में उनके परिवार के साथ शुक्रवार को $2.7 करोड़ में समझौता किया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 25 मई को एक गोरे पुलिस अधिकारी डेरिक शॉविन ने लगभग 9 मिनट तक फ्लॉयड की गर्दन को अपने घुटनों से दबाए रखा था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। फ्लॉयड के परिवार ने जुलाई में शहर प्रशासन के खिलाफ संघीय नागरिक अधिकार के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था। उनकी मौत के लिए शॉविन और 4 दूसरे अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि शहर ने अपने पुलिस बल में अत्यधिक बल प्रयोग और नस्लवाद की संस्कृति को पनपने दिया। जॉर्ज की बहन ब्रिजिट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्हें और परिवार को इस बात की खुशी है कि आखिरकार उनके भाई को इंसाफ दिलाने का यह संघर्ष अपने अंजाम तक पहुँचा। उनकी मौत ने दुनिया को जीने की नई राह दिखाई। परिजनों ने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ रकम हासिल करना नहीं था, बल्कि हम चाहते हैं कि देश की न्याय प्रक्रिया में सुधार हो और जॉर्ज के हत्यारों को सख्त सजा मिले। वहीं उनके परिवार के वकील बेन क्रम्प ने कहा है कि अब ब्लैक लाइव्स मैटर सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि हमारे कार्यकलाप में दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने सिटी के नेतृत्व का भी शुक्रिया अदा किया। गौरतलब है कि फ्लॉयड की मौत के बाद मिनियापोलिस समेत पूरे अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और देश भर में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से आंदोलन चलाकर आवाज उठाई गई, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ आवाज बन गए। यूरोप समेत पूरी दुनिया में काले लोगों के साथ दशकों से हो रहे भेदभाव के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। यही नहीं, माना जाता है कि जिस तरह उस वक्त की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया, उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भी भुगतना पड़ा और रिपब्लिकन पार्टी हार गई। जॉर्ज फ्लॉयड को एक दुकान में नकली बिल का इस्तेमाल करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गिरफ्तार करने वाले डेरिक शॉविन ने 9 मिनट तक उनकी गर्दन अपने घुटनों से दबाए रखी थी। फ्लॉयड इस दौरान मदद के लिए चिल्लाते रहे और आखिर में उनकी मौत हो गई थी।
रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं, और मैं हूँ रोहित जोशी। अब रुक अगली खबर का। क्वाड देशों के समूह की पहली वर्चुअल समिट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने, कोविड-19 और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर मिलकर काम करने का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर उभर रहे क्वाड देशों के समूह की इस वर्चुअल समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा शामिल हुए। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवैन ने इस मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस में दिए अपने बयान में कहा, बावजूद इसके कि हम एक कठिन दौर में हैं, इस मीटिंग के बाद भविष्य को लेकर आशा का संचार हुआ है। हालांकि सुलिवैन ने कहा है कि मीटिंग में सभी देशों ने साफ तौर पर दर्शाया है कि चीन को लेकर उन्हें कोई भ्रम नहीं है, लेकिन यह मीटिंग बुनियादी तौर पर चीन को लेकर नहीं थी। इस मीटिंग का अधिकतर ध्यान मौजूदा वैश्विक संकट पर था, जिसमें क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 की चुनौतियाँ शामिल हैं। इधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट के दौरान अपने वक्तव्य में कहा है कि क्वाड समूह के सभी देश लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोदी ने कहा है कि क्वाड के सभी देश एक आजाद, खुले हुए और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर मिताली राज ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। 38 साल की मिताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया है। वह अपना 311वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल रही थी। मिताली लखनऊ में खेले जा रहे मुकाबले में जैसे ही 35 रन के निजी स्कोर पर पहुंची, उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली। इंग्लैंड की चार्लेट एडवर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। मिताली को उनसे आगे निकलने के लिए अब 299 रनों की जरूरत है। मिताली ने वनडे में सबसे ज्यादा 6,974 रन बनाए हैं। वह वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने से सिर्फ 36 रन ही दूर हैं। मिताली ने जून 1999 में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 10 टेस्ट मैचों में 51 के औसत से 663 रन, वनडे में 212 मैचों में 50.53 के औसत से 6,974 रन और T20 के 89 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 37.52 के औसत से 2,364 रन बनाए हैं। मिताली ने अपने करियर में रिकॉर्ड 75 अर्धशतक और 8 शतक जमाए हैं। इनमें से 54 अर्धशतक और 7 शतक उन्होंने वनडे में जमाए हैं। टेस्ट मैचों में उन्होंने एकमात्र शतक 214 रन इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में टॉन्टन में बनाया था। इधर बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे म्यांमार के नागरिकों को अस्थायी तौर पर डिपोर्ट न करने और अमेरिका में वर्क परमिट जारी करने की फौरी राहत दी है। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद बने अस्थिरता के हालात में यह कदम उठाया गया है। इससे पहले से ही अमेरिका में रह रहे म्यांमार के तकरीबन 1600 नागरिकों को राहत मिलेगी, जिनमें म्यांमार के वे राजनयिक भी शामिल हैं जिनका म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद से वहां के नए सैन्य प्रशासन से ताल्लुक टूट गया है। यह टेम्पोररी प्रोटेक्शन स्टेटस 18 महीनों के लिए दिया गया है। म्यांमार में 1 फरवरी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी आंग सान सू की सरकार का सेना ने तख्ता पलट कर दिया था और सू की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से म्यांमार में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी हैं, जिन्हें दबाने के लिए सेना ने बेहद हिंसक तरीका अपनाया है। अब तक कम से कम 70 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और 2000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इधर बीते कुछ हफ्तों से कोल्चिगिनो जेल में क्वारंटीन किए गए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कड़े आलोचक अलेक्जेई नावल्नी को अब किसी अज्ञात पीनल कॉलोनी में ले आया गया है। टास न्यूज एजेंसी की ओर से जारी की गई एक खबर में कहा गया है कि अब नावल्नी अगले 2.5 साल की सजा यहीं काटेंगे। हालांकि नावल्नी के वकीलों तक को यह नहीं बताया गया है कि नावल्नी किस पीनल कॉलोनी में ले जाए गए हैं। फेडरल पेनिटेंशरी सर्विस की एक प्रवक्ता ने कहा है कि निजी जानकारियों को सुरक्षित रखने के कानूनों के चलते इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता कि नावल्नी कहाँ हैं। इधर नावल्नी के समर्थकों ने इस घटनाक्रम के खिलाफ ट्विटर पर वेयर इज नावल्नी हैशटैग चलाया हुआ है। नावल्नी को पैरोल के उल्लंघन के एक मामले में जेल की सजा सुनाई गई है, जिसके बारे में नावल्नी के समर्थकों और पश्चिमी देशों का मानना है कि यह राजनीतिक वजहों से किया गया है। पिछले साल एक यात्रा के दौरान नावल्नी की तबीयत बेहद तबीयत खराब हो गई थी और वे कोमा में चले गए थे। बाद में उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दावा किया था कि उन्हें नर्व एजेंट देकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन रूस की सरकार का कहना है कि उनके डॉक्टरों को परीक्षण के दौरान ऐसा कोई नर्व एजेंट नहीं मिला था। अब चलते चलते एक और खबर पर नजर। रिटेल सेक्टर की जाइंट कंपनी अमेज़न ने अमेरिकी कांग्रेस को दिए एक स्पष्टीकरण पत्र में कहा है कि वह ऐसी किताबों को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचेगी जो कि समलैंगिकता को बीमारी बताती हों। अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपब्लिकन सांसद ने अमेज़न पर सवाल उठाया था कि क्यों उसने अपने सभी प्लेटफॉर्म से एक कंजर्वेटिव ऑथर की किताब को हटा दिया था। इसी के जवाब में कंपनी ने अमेरिकी कांग्रेस को लिखा, यह अधिकार हमारे पास सुरक्षित है कि हम कोई खास तरह का कंटेंट नहीं बेचेंगे। पिछले महीने ही अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इक्वेलिटी एक्ट नाम के कानून को पास किया है, जिसके मुताबिक समलैंगिकों के खिलाफ किसी भी किस्म के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि अभी अमेरिकी सीनेट में इस कानून का पास होना बाकी है। अब तक सीनेट की 100 सीटों में से 50 सीटों पर कब्जा रखने वाले किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने इस बिल के समर्थन में वोट डालने की बात नहीं कही है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।